प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग चौथी, चौथा, लेक्चर नंबर 271। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आययाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुं, सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करु धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थं कर अने सौ सिद्धशुदास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणि हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ चिदनेय नमस्करण करिए रिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्य निजेनाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी हम चौथी पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुधा भाग चार, और उसके पृष्ठ संख्या 59 पर हम आ गए। 59। कल हमने गाथा पढ़ी थी और अभी वो टीका पढ़ने जा रहे हैं। अन्वयार्थ में क्या लिखा था, अन्वयार्थ यानी वो गाथा का जो अर्थ है कि जे जीवो पर्यायो मा लीन छे, पर्याय मा लीन उसका अर्थ क्या है, पर्याय इतना ही अपने को मान रहे और उसी में रचे पचे है, तेमने परसमय कहवामां आव्या छे। परसमय ने मिथ्या दृष्टि। અને જે જીવો આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિત છે તે સ્વ સમય જાણવા, એ વાત કલ હમને પડી હતી। અબ ઇસી કી ટીકા, યે જો ટીકા હે વો અમૃત ચંદ્રાચાર્ય ને સંસ્કૃત મેં લિખી થી, ઉસકા હિન્દી અનુવાદ હૈ। જેવો જીવ પુદ્ગલાત્મક અસમાન જાતીય દ્રવ્ય પર્યાયનો, કે જે સકળ અવિદ્યાઓનું એક મૂળ છે, અવિદ્યા ને અજ્ઞાન, यानी संपूर्ण अज्ञान का मूल क्या है कि जीव पुद्गलात्मक ऐसी जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसको, उसका तेनो आश्रय करता थका। जो ने जे जीव असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय करते हुए, करता थका ने करते हुए, चालू वर्तमान काल बेलोकर जी,
चालू वर्तमान,
करता थका करते हुए,
करते हुए
यथोक्त यथाउक्त यानी जैसे पहले बताया है वैसे आत्म स्वभावनी संभावना करवाने नपुसक होवाती। ये संभावना करना टालना वो अर्थ में ये नहीं है, वो तो अलग अर्थ में, वो जिसको उपरोधिक संभाव हमने उनकी संभावना के लिए वो बात यहाँ नहीं है। संभावना, भावना, सम्यक भावना, उसमें एकाग्र हो जाना, उस रूप भवन भावना, इन्हें हमने इच्छा की वो भावना भी नहीं है, उस रूप होना उसको भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय करता थका किसका? असमान जाती है। क्या कर रहे हैं? जो पहले बताया है ऐसे आत्म स्वभाव की संभावना, उसमें एकाग्र होना, उस रूप होना, करवाने न पुसक हुआ थी, यानी करना उनके लिए शक्य नहीं है, वो समर्थ नहीं है करने के लिए। क्यों? कौन? जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय का ही आश्रय लेते हैं, वो आत्म स्वभाव का संभावना, यानी आत्म स्वभाव का अनुभव करने में नपुंसक है, वो तो शक्तिहीन है। होवा थी तेमाज बल धारण करे छे, तेमाज ने असमान जाति पर्याय में, अर्थात ते असमान जातीय द्रव्य पर्याय प्रत्येज जोर वाला छे, यानी सारा जोर सारा वीर्य किसमें जा रहा है उनका? ये विपरीत परिणाम में जा रहा है। तेओ यानी वे जीव जेमने निरलगर एकांत दृष्टि उछले छे एवा, ये कैसे उनके एकांत दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, एक ही निरर्गल यानी उसका, हाँ निरर्गल का एग्जैक्ट अर्थ क्या हो? निरर्गल हाँ बिना काम की व्यर्थ, पर निरर्गल का एक क्या अर्थ है? निरर्गल अच्छा, निरर्गल यानी जोर शोर से एकांत दृष्टि उछले छे एवा, ऐसे वो जीव आ हूँ मनुष्य छू, ऐसे मानने वाले क्या करे? यह मैं मनुष्य ही हूँ, मारू
एकांत दृष्टि मिथ्या दृष्टि।
देखो मिथ्या दृष्टि के भी अलग अलग टाइप है, एकांत दृष्टि यानी एकांत मान्यता है, यही मैं हूँ, कौन सा मनुष्य ही मैं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ बात ही नहीं, मैं मनुष्य ही हूँ, ये एकांत हो गया उनका। विपरीतता तो है ही, वो विपरीतता में एकदम ठाम है वो एकांत, भाव अलग आता है। एकांत दृष्टि का अर्थ होता है एकांत मान्यता, एकांत मिथ्या तो क्या एकांत किया? आ हूँ मनुष्य ज छू, ये नहीं, वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा मनुष्य कहते वो बात नहीं, व्यवहार से कहने की वो नहीं, एक मैं मनुष्य ही हूँ, यानी मेरा अस्तित्व अन्य कुछ नहीं, मैं मनुष्य ही हूँ, इतना हमारा अस्तित्व ऐसा कहते। ये सब मिथ्या दृष्टि यहाँ है, यानी वो तन में ही अपने अपनापन कर दिया उसने, मनुष्य ही मैं हूँ, मेरा अन्य कोई अस्तित्व नहीं है। आओ क्या कहा? हूँ मनुष्य आ हूँ, यानी यह मैं मनुष्य ही हूँ, मारूज आ मनुष्य शरीर छे, मैं मनुष्य ही हूँ, यह अहम पना हुआ उसमें, मैं पना हुआ और मारू यानी यह मेरा, ये ममत्व अहम और मम दोनों हो गए। क्या कहते हैं? मारूज आ मनुष्य शरीर छे, कोई कहते मैं मनुष्य ही हूँ, कोई कहते नहीं ये मनुष्य शरीर ये मेरा ही है, ये मेरा और वो मैं, इस रूप दो भूले अलग अलग है, यही मैं हूँ और ये मेरा है, ये दोनों ही पद्धति से विचार कर रहे हैं। एम अहंकार विचार है नहीं, मान रहे वैसे अहंकार ममकार वड़े, वड़े यानी उसके द्वारा, अहंकार यानी उसमें अहम बुद्धि मैंपना, ममकार यानी मेरेपन, मम बुद्धि मम यानी मेरा, अहम यानी मैं इस रूप हूँ और ये मेरा है, दोनों हो गए ना। ममकार वड़े ठगाता थका, दूसरे को किसी को नहीं उसको ठगा रहा है, वो स्वयं हाँ ठग रहा है, अपने ही अहंकार और ममता के कारण स्वयं ठग रहा है, ठगाता थका।
ओ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे को ठगा नहीं सकता है,
बात सही है,
तो ठगाएगा तो अपने स्वयं को ठगा,
स्वयं को ही हो रहा है, और अपने अज्ञान के कारण, अपने मिथ्या मान्यता के कारण, ये एकांत बुद्धि बताई ना उसने, अहंकार और ममकार किसमें? असमान जातीय द्रव्य पर्याय में अहंकार और ममकार, उसका अर्थ क्या है? अहंकार का अर्थ क्या है? मैं मनुष्य ही हूँ, और ममकार क्या, ये मेरा ही यह, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, मारू ज लगा है ना,
ये शरीर रूप ही मैं हूँ ऐसा लोक बांधते तो अपना फायदा है कि नहीं? अरे धंधा कैसे चलेगा? मैं मेरी बात बोलता हूँ, लोग फोटो निकालने को आते थे कि शरीर रूप मैं हूँ, तो जब ख्याल में आया कि अपन मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे, बंद
दवा देती थी, लोग पैर पड़ते थे उसके। अभी आत्मा के डॉक्टर हो गए।
देखो क्या कहते हैं, यानी उससे अपने कोई ठगा रहा है, और ऐसे करते करने से क्या हो रहा है, अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार। अविचलित चेतना विलास का अर्थ क्या है, विचलित नहीं होना, यानी उसमें स्थिर हो गया, एकाग्र हो जाना। चेतना विलास यानी चैतन्य रूप परिणति, वो परिणति है ना, वो उसको आत्म व्यवहार कहा। त्रिकाली स्वभाव भाव है, और उसमें जो लीन होने से जो वहाँ आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है वो क्या है, चेतना विलास। ऐसा जो आत्म व्यवहार है उससे च्युत हो गया है, यानी उसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है,
यानी अपने आत्म स्वरूप में लीन होना छोड़कर विचलित हो गया ना वो। तो अविचलित चेतना विलास मात्र जो आत्म व्यवहार है, यानी अपने स्वरूप में एकाग्र होने का जो व्यवहार है, उससे वो हट गया।
वो परिणमन जो है वो उसका नहीं हो रहा है, आत्मा के अनुभव रूप जो परिणमन होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा। क्या कहते हैं, अविचलित चेतना विलास। अविचलित यानी जो आत्मा में स्थिर होना है, एकाग्र होना है, वो एकाग्र होने से जो परिणमन हुआ, कौन सा, समय दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, तो वो आत्म व्यवहार कहा उसको, उससे च्युत हुआ, यानी वो उसने प्राप्त ही नहीं किया तो उसके च्युत हुआ कहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले प्राप्त हुआ था और उससे उसने किया ही नहीं। और क्या किया, जेमा समस्त क्रियाकलाप ने छाती सरसो भेटवामां आवे छे। क्या कहा, ये सारा क्रियाकांड है ना, उसको उसने छाती सरसो भेटवामां ने उसमें आलिंगन कर दिया, यानी उसमें रचा पचा है। क्या कहते हैं, समस्त क्रियाकलाप ने छाती सरसो भेटवामां आवे छे एवा मनुष्य व्यवहार नो आश्रय करीने। आत्म व्यवहार को छोड़ दिया, आत्म व्यवहार क्या था, आत्मा का अनुभव था, समय दर्शन ज्ञान चरित्र, उससे तो च्युत हुआ, यानी उसको तो प्रकट किया ही नहीं। और क्या हो रहा है, आश्रय किसका है, मनुष्य व्यवहार का, कि हमको ये तो करना चाहिए ना, बच्चों को क्या छोड़ देंगे क्या, पैसा नहीं कमाएंगे तो कल खाएंगे क्या, ये क्या है, समस्त मनुष्य व्यवहार। छाती सर जी उसको तो हम कहते कौटा मराठी में कौटाड़ून बस रहे, हाँ गले लगा, मराठी एग्जैक्ट शब्द है कौटाड़ने उसके ऐसे गट जिसको कहें मीठी मारून बस रहे, कौटाड़ून बस रहे। छोटे बच्चे तो प्यार से करते, ये तो ऐसे नहीं, मेरी चीज है अभी मैं नहीं छोड़ूंगा इस तरह से, ये ऐसी वृत्ति है उसकी, मैं मनुष्य हूँ ना, ये तो मुझे करना चाहिए ना, यानी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। बच्चे की कोई चीज है और वो किसी ने मांगी तो क्या करता है, ऐसे जैसे जोर से पकड़ के रखता है, ये है छाती सरसो। समस्त क्रियाकलाप ने छाती सरसो भेटवामां आवे छे एवा मनुष्य व्यवहार नो आश्रय करीने। रागी अने द्वेषी थता थका, देखो समय दृष्टि को भी गृहस्थ जैसे उसके भी क्रियाकलाप हो गए कि नहीं हो गए। गृहस्थ है तो ये तो राजा है तो युद्ध में भी जाएगा, गृहस्थ है तो बाल बच्चों की संभाल भी करेगा, धंधा व्यापार भी करेगा, परंतु यह है ना छाती सरसो, और वो उसी का आश्रय कर रहा है, उसके है वो मनुष्य व्यवहार, परंतु वो तो जो हो उदय योग्य हो रहा है वो करने जैसा नहीं मान रहा है। अभी इसमें ये छोड़ने को तैयार नहीं है, उसी को पकड़ के बैठा है। आश्रय करीने रागी अने द्वेषी थता थका, परद्रव्य रूप कर्म साथे संगत पनाने ली थे। અને પરદ્રવ્ય રૂપ કર્મ સાથે જોડાતા હોવાને લીધે ખરેખર પરસમય થાય છે, અર્થાત પરસમય રૂપે પરિણમે છે. પરસમય કહો, મિથ્યા દૃષ્ટિ કહો, એહી બાત હૈ. યાની વો રાગ દ્વેષ તો કરતે હી રહા હૈ, ઓર વો ઉસ રાગ દ્વેષ કે સાથ ભી ઉસકી એકત્વ બુદ્ધિ હો રહી હૈ. કર્મ મેં વો તો પરદ્રવ્ય કર્મ ભી લે સકતે ઓર રાગ દ્વેષ કો ભી ઉસમે ભાવ કર્મ કો ભી ડાલ સકતે. ભાઈ સ્વામીજી ક્યાં કહેંગે દેખેંગે. તો કહેતે પરદ્રવ્ય રૂપ કર્મ સાથે સંગતપનાને લીધે, સંગતપના એને ઉસમે જોડના હૈ, ઉસકે વશ હોના. જૈસે હમ જડ કર્મ કી બાત કરતે હૈ તો ઉસકે ઉદય મેં ઉસકે વશ હો રહા હૈ, ઉસમે જુડ જા રહા હૈ, જોડાતા હોવાને લીધે ને, જિસકો હમ કહેતે કર્મ કે ઉદય મેં જુડ જાના, ઉસ રૂપ અપને કો માન લેના, ખરેખર પરસમય થાય છે, અર્થાત પરસમય રૂપે પરિણમે છે, પરિણમન ઉસકા પરસમય રૂપ હો રહા હૈ. યે તો જો અપને કો અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય વહી મેં હું, યે શરીર મેરા હૈ, એસા જો માનતા હૈ ઓર ઉસી ક્રિયાકલાપ મેં લગા હૈ, ઉસકો છોડને કો બિલકુલ તૈયાર નહીં, ઉસકી બાત કી. અબ દૂસરા જીવ લે રહે, યે પરસમય, યે મિથ્યા દૃષ્ટિ પરસમય કી બાત કર દી. અબ કહેતે અને જેઓ ઓર જો અને અન્ય કોઈ જીવ ઉનકી બાત કરતે હૈ, અસંકીર્ણ દ્રવ્યગુણ પર્યાયો વડે સુસ્થિત એવા ભગવાન આત્માના સ્વભાવનો. અભી ઇસકો કિસકા આશ્રય હૈ, ભગવાન આત્મા કે સ્વભાવ કા. વો પરસમય કો સંકીર્ણ ને ઇકઠે ને, હા અસંકીર્ણ વો જુદા જુદા હૈ ને, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય વડે, યાની ઉસકા હરેક કા અપના અપના સ્વરૂપ લક્ષણ જુદા જુદા હૈ. અભી હમને જો અભી તક દેખા હૈ, દ્રવ્ય ક્યા હૈ, ગુણ ક્યા હૈ, પર્યાય ક્યા હૈ, ઉસકો જૈસા હૈ વૈસા અચ્છી તરહ સે સમજ કર. અને ભગવાન આત્મા કા સ્વભાવ હૈ તો વો દ્રવ્ય સે ગુણ સે પર્યાયપણે સે બરાબર ઉસકો સમજ કર. ભગવાન આત્માના સ્વભાવનો કે જે સકળ વિદ્યાઓનું એક મૂળ છે. દેખો પહેલે વાક્ય કે સાથ ઇસકો કમ્પેર કરો. પહેલે ક્યાં થા અસમાન જાતિ પર્યાય જો થા, અસમાન જાતિ પર એક મિનિટ, સકલ અવિદ્યાઓ કા એક મૂળ હૈ એસા દેખા થા ને. જીવ પુદ્ગલાત્મક અસમાન જાતીય દ્રવ્ય પર્યાયનો આશ્રય કરે છે, ઓર વો કૈસે હૈ, સકલ અવિદ્યાઓ કા મૂળ હૈ. ઓર યહાં ક્યા કર રહા હૈ, આત્મ સ્વભાવ કા આશ્રય કર રહા હૈ. વો આત્મ સ્વભાવ કૈસા હૈ, સકલ વિદ્યાઓનું એક મૂળ છે, હે ને. યે એક એક વાક્ય કે સાથ ઉસકી કમ્પેરિઝન હોગી. તેનો આશ્રય કરીને યથોક્ત આત્મ સ્વભાવની સંભાવનામાં સમર્થ હોવાને લીધે, વહા ક્યાં લિખા તા, સંભાવનામાં ન પુસક એસા શબ્દ આયા થા. દેખો પીછે કે પેજ પર કમ્પેરિઝન કરો, વહા ક્યાં લિખા તા, યથોક્ત એની જૈસે પહેલે બતાયા હૈ વૈસા, યથા ઉક્ત આત્મ સ્વભાવની સંભાવના કરવાને ન પુસક. વો અસમાન જાતિ વાલા જીવ ગયા થા. યહાં ક્યાં કહે રહે, આત્મ સ્વભાવની સંભાવનામાં સમર્થ હોવાને લીધે પર્યાય માત્ર પ્રત્યયનું બળ એને જોર દૂર કરીને. વહાં તો થા કે અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પ્રત્યય પર્યાય પ્રત્યય જોરવાળા, એ દ્રવ્ય પર્યાય કી વાત થી, અસમાન જાતિ દ્રવ્ય ને મનુષ્યપના કી વાત હો રહી હતી, ઉસી મેં ઉસી કા જોર લગ રહા હતા. અબ યહાં ક્યાં હો રહા હૈ કે પર્યાય પ્રત્યયનું બળ જો છે, જોર હૈ, વો દૂર હો ગયા. આત્માના સ્વભાવમાં જ સ્થિતિ કરે છે એટલે લીન થાય છે. એ સમજમાં ને દોનો કા ડિફરન્સ ક્યાં હૈ, વો મિથ્યા દૃષ્ટિ ક્યાં કર રહા હૈ ઓર એ સમ્ય દૃષ્ટિ ઉસકો ક્યાં પોઝિશન હૈ વો બતા રહે. તેઓ એને વો જીવો કી બાત હો રહી હૈ, પહેલી વાત હૈ ને, જેઓ એસા એસા કરતે હૈ, તેઓ એને વે જેમ, અચ્છા ભેળસેલ વિનાનું અસંકીર્ણ, હા ભેળસેલ નહીં ઉસમે જુદા જુદા, બરોબર હૈ, સંકીર્ણ મેં ઇકઠા, એ પર નિરર્ગલ, હા બરોબર હૈ, નિરર્ગલ એને બેહદ બેહદ એકાંત, निरर्गल है ना बेहद,
निरर्गल माने अंकुश बिना,
अंकुश बिना,
अंकुश
बेहद
अनकंट्रोल्ड,
हाँ
असहमित ना।
देखो अभी हम आते हैं यहाँ पर पेज नंबर 60 पर। तेओ वहां से पढ़े नीचे के पैराग्राफ की सेकंड लाइन चौथी लाइन, तेओ यानी उन जीवों की बात करें जेमने सहज खिलेली अनेकांत दृष्टि वड़े, वो एकांत वाले थे, वो निरर्गल थे, निरर्गल एकांत, हाँ। और ये कैसी है, सहज खिलेली अनेकांत दृष्टि वड़े समस्त एकांत दृष्टि ना परिग्रह ना आग्रह, आग्रह ने पकड़ प्रक्षीण करिया छे, नष्ट किया समस्त एकांत दृष्टि। जो एकांत दृष्टि जो अलग अलग होती है ना, ये द्रव्य ही नित्य ही है, सर्वथा नित्य है मानने वाले, वो एकांत दृष्टि हो गए। बस सर्वथा क्षणिक ही मानने वाले, एकांत दृष्टि हुई। ये सब ले लेना उसके अंदर। तो सभी प्रकार के जो एकांत दृष्टि है, यानी कि समस्त एकांत दृष्टि ना परिग्रह ना आग्रह प्रक्षीण करिया छे, उसके जो पकड़ है उसको प्रक्षीण कर दिया है। एवा मनुष्यादि गतियों मा अने ते गतियों ना शरीरों मा अहंकार ममकार नहीं करता। ऊपर वाला जो जीव था उसमें अहंकार और ममकार कर रहा था, ये मनुष्य पर्याय में तो है, चारों गति में हो सकता है समय दृष्टि। तो कहते कि मनुष्यादि लिख लिया, मनुष्यादि यानी चारों गति में कहीं पर भी ले सकते हैं, और उस गति के संबंधी जो पर्टिकुलर शरीर होगा उसमें अहंकार ममकार नहीं करता, नहीं करते हुए इसे अनेक ओरड़ाओं में संचारित रत्न दीपक नी माफक एक रूप ज आत्मा ने उपलब्ध करता थका, अनुभवता थका। क्या कहते हैं, अने ओरड़ा ने रूम्स, रूम 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 खोली,
कमरा,
हाँ, अनेक ओरड़ा में अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक नी माफक। रत्न दीपक क्यों कहा, वो ऑर्डिनरी दीपक उसकी तो लो ऐसे जो ज्योति होती है तो विचलित होती है, और ये रत्न दीपक यानी रत्नों की जो ज्योति है, रत्नों का जो प्रकाश है वो उसमें ऐसे स्थिर है, एकदम स्थिर प्रकाश होता है कायम। इसलिए कहते कि अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक नी माफक एक रूप ज आत्मा ने उपलब्ध करता थका, यानी आत्मा को अलग अलग रूप से नहीं उपलब्ध है, वो तो एक स्वभाव तो कायम वैसा का वैसा है, उसमें कोई बदल नहीं होता है, अनादि अनंत एक रूप जो होता है स्वभाव, बदघट नहीं। कल हमने उस स्वभाव की बात देखी थी, उसको उपलब्ध करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। हाँ यहाँ लिखा ना अनुभवता थका, अनुभव करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्मव्यवहार ने अंगीकार करीने, अविचलित यानी स्थिर एकाग्र में, एकाग्र हो ना, स्थिर हो गए आत्मा स्वभाव में, स्थिर हो गए चेतना विलास यानी उसमें उसकी परिणति ले लेना, और उसी को आत्मव्यवहार कहा, यानी आत्मा का अनुभव प्रकट किया उन्होंने, अंगीकार करीने जेमा समस्त क्रियाकलाप ने भेटवा में आवे छे एवा मनुष्य व्यवहार नो आश्रय नहीं करता थका। ऊपर क्या था, छाती सरसों भेटवा में आवे छे और उसका आश्रय छोड़ने को तैयार नहीं थे, और यहाँ क्या कह रहे, हाँ समस्त क्रियाकलाप ने भेटवा में आवे छे एवा मनुष्य व्यवहार नो आश्रय नहीं करता थका, राग द्वेष ना उन्मेष अटकी गया हुआ ने लीधे, वो राग द्वेष में उसकी रुचि पड़ी थी और उसी को वहां लिखा था ना रागी द्वेषी थता थका। यहाँ क्या कह रहे, राग द्वेष ना उन्मेष अटकी गया है, यानी जिसको विरक्त है ना राग के प्रति भी, अभी वो तो उदासीन हो गए राग द्वेष के प्रति, परम उदासीनता ने उलम, इसको उदासीन कहते, ने खाली मुंह लटका के बैठा वो उदासीन वो बात नहीं है। समस्त परद्रव्य संगति दूर करी होवाने लीधे अभी कोई परद्रव्य से संबंध ही नहीं उसका, और उसकी संगति दूर करने के कारण केवल स्वद्रव्य साथे संगतपणु हुआ थी, खरेखर स्वसमय थाय छे, क्योंकि पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है और उसका अनुभव पूर्वक उसने जान लिया है, इसलिए किसी परद्रव्य की संगति नहीं हो रही है कह रहे, अर्थात स्वसमय रूपे परिणमे छे। माटे नेक्स्ट पेज 61 पर स्वसमय ज आत्मानु तत्व छे, अब ये पूरे टीका का भावार्थ अभी बता रहे, इसका प्रवचन तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका भावार्थ देखते हैं। हूँ मनुष्य छू, शरीरादि ने समस्त क्रियाओं हूँ करू छू, ये मनुष्य व्यवहार की बात हो रही ना, स्त्री पुत्र धनादिकना ग्रहण त्यागनो हूँ स्वामी छू वगैरह मानू, इतना ही अपना अस्तित्व माने, मैं मनुष्य ही हूँ और बस ये सारा ये मेरा है, ये मैंने पैसा कमाया, मैंने धंधा किया, मैंने घर बांधा, मैंने ये किया, ये सब यही है ना, कि स्त्री पुत्र धनादिकना ग्रहण त्यागनो हूँ स्वामी छू, त्याग का भी और ग्रहण का भी, मैंने ये कमाया, मैंने ये किया, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, इसका ही स्वामी होकर बैठा वगैरह मानू, मान्यता की बात है ना, अभिप्राय में खोटा है, ते मनुष्य व्यवहार यानी मनुष्य रूप वर्तन छे, मात्र अचलित चेतना तेज हूँ छू एम मानव परिणमव ते आत्मव्यवहार आत्मा रूप वर्तन छे। दो अलग अलग लिए, पर समय और ये स्वसमय, जे वो मनुष्यादि पर्याय मा लीन छे, यहाँ पर्याय कहने से असमान जातीय द्रव्य पर्याय को यहाँ पर्याय कर, मनुष्यादि कहने से मनुष्य है, तीर्यंच है, नारकी है, देव है, तो जे वो मनुष्यादि पर्याय मा लीन छे ते एकांत दृष्टि वाला लोको सर्वथा अपने को शरीर रूप ही मान के बैठे है, उसको कहेंगे एकांत दृष्टि, सर्वथा माना है ना, हाँ अभी संयोग में शरीर है मनुष्य कहलाता है, क्योंकि उसको आगम में भी मनुष्य कहेंगे, वो बातें समय दृष्टि भी जानेगा कि नहीं जानेगा, परंतु उसकी तो मैं तो जीव हूँ, स्वभाव में एकत्व किया, ममत्व किया, उसने अहमपना किया है, और अभी संयोग में मनुष्य रूप से है ये वो जानेगा, यानी उसको अनेकांतिक कहा, और ये क्या है, बस मैं मनुष्य ही हूँ, यही शरीर ही मैं हूँ, उस रूप ही मैं हूँ, उससे मेरा दूसरा कोई स्वरूप ही नहीं है, आत्मा फात्मा क्या करते हो बार बार, ऐसा कोई होता ही नहीं, ऐसा कहने वाले मिलेंगे आपको, वो क्या है एकांत दृष्टि वाले। देखो जे वो मनुष्यादि पर्याय मा लीन छे ते एकांत दृष्टि वाला लोको मनुष्य व्यवहार नो आश्रय करता हुआ थी रागी द्वेषी थाय छे, अने ए रीते परद्रव्य रूप कर्म साथे संबंध करता हुआ थी तेओ पर समय छे, अने जेओ भगवान आत्म स्वभाव मां ज स्थित छे ते अनेकांत दृष्टि वाला लोको मनुष्य व्यवहार नो आश्रय नहीं करता, आत्म व्यवहार नो आश्रय करता हुआ थी, आश्रय ने उसके आदरणीय माना है उसी को, रागी द्वेषी थता नथी अर्थात परम उदासीन रहे छे, ये अज्ञानी कैसे अपने को रागी द्वेषी मैं उस रूप हुआ ऐसा भी मान रहे, यहाँ राग द्वेष बहुत नहीं के बराबर है, अनंतानुमंदी चले गए मिथ्यात्व गए तो नहीं के बराबर कहते उसको है, परंतु अपने को रागी द्वेषी नहीं उस रूप हुआ ऐसा नहीं मान रहे, वो उसकी भिन्नता भी ख्याल में आ गई है, इसलिए कहते परम उदासीन रहे छे, अने ए रीते परद्रव्य रूप कर्म साथे संबंध नहीं करता, परद्रव्य रूप कर्म साथे संबंध का अर्थ है जैसे राग के उदय में यहाँ राग हो रहा है पर्याय में, पर अपने को राग रूप मानना ही वो परद्रव्य के कर्म साथे संबंध रखना है, जिसको कहेंगे जुड़ना, उसमें उसमें नहीं जुड़ रहे, संबंध नहीं करता, केवल स्वद्रव्य साथे ज संबंध करता हुआ थी, ये मैंपना किसमें स्थापित किया, स्वभाव में, स्वभाव में तो कोई राग द्वेष तो है ही नहीं है, तो केवल अपने स्वभाव के साथ ही एकत्व मान लिया है, स्वद्रव्य साथे संबंध करता हुआ थी ते वो स्वसमय छे, यानी वो परसमय और स्वसमय किसको कहना, और उसका क्या स्वरूप है उसकी बात उन्होंने बता दी। ये तो अमृतचंद्राचार्य की टीका और उसका भावार्थ हुआ। अब हमको उल्टा चलना है पेज नंबर 57 पर। वहाँ जयसेनाचार्य की टीका ने दो बोल्ड लाइन के बीच में, उसको पढ़ेंगे। संस्कृत। अथ प्रसंगायाताम परसमय स्वसमय व्यवस्थाम कथयति। यानी यहाँ प्रसंगानुसार आनुषंगिकी है, प्रसंगानुरूप प्रसंग स्वसमय और परसमय की व्यवस्था यहाँ बताएंगे। पेज निकाल के रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात होगी तो बताएंगे आपको। प्रसंग प्राप्त जिसको कहते हैं। अभी जो गाथा लिखी है उसके शब्द लेके उसको संस्कृत में समझाए। जे पज्येषु निरदा जीवा, यानी ये पर्यायेषु निरताहा जीवाहा। वो ये कैपिटल नहीं चाहिए था क्योंकि वो प्राकृत संस्कृत है, केवल प्राकृत को ही कैपिटल में रखना था। ये यानी जो पर्यायेषु निरताहा जीवाहा, जो जीव पर्यायों में निरत है, लीन है। परसमयगत्य निर्दिष्टा ते परसमया इति निर्दिष्टा कथिता। ये क्या है, जिसको बोल्ड लिखना था वो भी और जिसको नहीं लिखना वो भी। तथा ही वही इस प्रकार है, मनुष्यादि पर्याय रूप अहम इति अहंकारो भण्यते। मनुष्यादि पर्याय रूप मैं हूँ इसको अहंकार कहते हैं। मनुष्यादि शरीरम तत् शरीर आधार उत्पन्न पंचेंद्रिय विषय सुख स्वरूपम च मम इति ममकारो भण्यते। यानी मनुष्यादि शरीर और उस शरीर के आधार से उत्पन्न जो पंचेंद्रियों के विषय सुख स्वरूप जो है वो मेरे है, उसको ममकार कहते हैं। शरीर को भी और वो शरीर के लगने वाले वो सब मेरे, हाँ वो ममकार हुआ। यानी शरीर से रिलेटेड सुख साधन कहो या बच्चे कहो घर कहो ये सब क्या मेरे, ये ममकार हुआ। ताभ्याम परिणता हाँ, उसमें जो उस रूप जो परिणत है ममकार अहंकार रहित परम चैतन्य चमत्कार परिणते च्युता। ये थे ये जो अहंकार और ममकार रूप जो परिणत है अभी उसकी उसका स्वरूप बता रहे हैं। पहले इनसे रहित जो जीव है उससे ये च्युत हुए ऐसा कह रहे। क्या कह रहे, ममकार अहंकार रहित। क्या है ममकार अहंकार रहित, परम चैतन्य चमत्कार परिणति। परम चैतन्य चमत्कार परिणति कैसी है, ये अहंकार और ममकार से रहित है उससे ये च्युत हुए हैं। उसको प्राप्त ही नहीं किया उसको कहेंगे उससे च्युत हो गए। इन परिणते है च्युता ये ते, जो उससे च्युत हुए हैं ऐसे वे जीव कर्मोदय जनित पर पर्याय निरतत्वात परसमया। कर्मोदय से जनित ये जो मनुष्य पर्याय है देव पर्याय है वो कैसे कर्म के उदय से प्राप्त है, तो कर्म के उदय से जनित कर्म से उदय से उत्पन्न ऐसे जो पर पर्याय उसमें निरत है उसमें लीन है। मनुष्य पर्याय कहे क्या है, तो कर्मोदय से उत्पन्न हुई पर्याय है उसी में वो लीन हो गया है, इस कारण उसको पर समय कहा। उन जीव को पर समय कहा, पर समय हा मिथ्या दृष्टयो बन्यन्ते। पर समय कहो या मिथ्या दृष्टि कहो एक ही है, उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आद स्वभाव मिठिदा, सेकंड लाइन है ना, आत्म स्वभाव में जो स्थित है ये पुनः आत्मस्वरूपे स्थिता ते सग समया मुने दौवा। जो आत्मस्वरूप में स्थित है उन्हें स्वसमया मंतव्य यानी ज्ञातव्य, उनको स्वसमय समझना चाहिए जानना चाहिए। दो लाइन के बीच में पढ़ रही हूँ। तद यथा वह इस प्रकार है, अनेक अपवरक संचारित एक रत्न प्रदीपैव अनेक शरीरेषु अपि एक अहम् इति दृढसंस्कारेण निजशुद्धात्मनि स्थिता ये ते कर्मोदयजनित पर्याय परिणति रहितत्वात् स्वसमया भवन्ति इति अर्थः। क्या कहते हैं, जो रत्न दीपक है उसको हमने अनेक कमरों में घुमाया, अनेक महलों में घुमाया कहो, परंतु वो तो एक ही है ना। तो जैसे अनेक कमरों में जो हम घुमाते हैं एक रत्न दीपक, ऐसा ही अनेक शरीरों में एक मैं ही हूँ ऐसा दृढ़ संस्कार से निज शुद्धात्मा में जो स्थित होते हैं वे कर्मोदयजनित पर्याय परिणत रहित होने से, कर्मोदयजनित पर्याय से परिणत पने से रहित हुए, यानी अभी मनुष्य पर्याय है तो मैं तो शुद्धात्मा जुदा हूँ, जानने वाला तो मैं जुदा हूँ, अनेक शरीरों में से आए, अभी समय दृष्टि भी अनेक दो चार पांच भाव तो करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको तो मैं तो जुदा हूँ ये बात वहाँ उसकी पता है उसको, इसलिए वो स्व समय कहते उसको, या उनको वे स्व समय है, इस तरह से इसका अर्थ हुआ। अब ये जो दोनों टीकाएं हो गई है, अब गुरुदेव के जो प्रवचन है उसको हम पढ़ेंगे। पेज नंबर है 59, जो गुजराती है ना उसके नीचे, लाइन के नीचे, नीचे का पैराग्राफ 59 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। हाँ हाँ, टीका देखो, पहले असमान जाति लिया है, देखो जो जीव पुद्गलात्मक दोनों लिए ना, जीव भी है और पुद्गल भी है, जीव और पुद्गल से इकट्ठा है, क्या है वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, उसको बाद में कहेंगे मनुष्यादि पर्याय, उसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, वो क्या है वो जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, क्योंकि उस रूप ही अपने को मानते हैं, यही तो अज्ञान है और वो अनादि अविद्या चल रही है। कौन सी अविद्या, जिस पर्याय में उत्पन्न हुआ असमान, उस रूप अपने को माना, तो गधा अपने को उस रूप मान रहा है, हम अपने को इस शरीर रूप मान रहे, वो उसके उसको गधा नाम नहीं मालूम होगा, परंतु अभी ये कौवा जो है, पंछी जो है, वो अपने को उस शरीर रूप मान रहा है और उसकी जो कुछ क्रिया है वही मेरी है ऐसा मान रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ, किसी भी पदेव हुआ, नारकी हुआ, मनुष्य हुआ, तिर्यंच हुआ, पर जहां जाता है वहां अपने को शरीर मानकर बैठा है, कब से, अनादि से, तो उसमें कोई पर्याय मिली नहीं मिली उससे क्या लेना देना, ख्याल में आती है बात। यहाँ क्या कहते हैं, देखो सकल अविद्याओं का एक मूल है, वो शरीर मिला इसलिए उसकी मान्यता नहीं हो रही, वो स्वयं अपने से अज्ञानी बना हुआ है। हाँ, यहाँ पर्याय मूड में शरीर के साथ ले लिया, पर्याय मूड कहते ना वो एक समय के पर्याय को छोड़कर, यहाँ पर्याय नहीं, जो असमान जाति द्रव्य स्थूल जो है मनुष्य पर्याय, वो पर्याय में एकत्व बुद्धि वाला जीव लिया, उसको पर्याय मूढ़ में इसको लिया, पर्याय मूढ़ में दोनों तरफ लेते हैं, क्योंकि अभी जितना ज्ञान है जितना राग है अभी पर्याय मात्र इतना ही अपने को मानता है, उसको भी उसमें शामिल कर देते हैं, पर यहाँ मूल में वो मनुष्य रूप अपने को मान रहा है, वो मूल में मूल ले लिया। तो यहाँ पर्याय मूढ़ में शरीर के साथ ले लिया, क्योंकि पर्याय की दृष्टि है उसकी दृष्टि पर ऊपर जाती है, पर्याय की दृष्टि ने प्राप्त शरीर की दृष्टि है, दृष्टि का अर्थ है उस रूप में हूँ ऐसी मान्यता, उसको दृष्टि कहते हैं, दृष्टि ने देखना उसके तरफ देख रहा है ऐसी बात नहीं है, कि पर्याय की दृष्टि है उसकी दृष्टि पर ऊपर जाती है, शरीर की पर्याय मेरी है और शरीर की पर्याय मैं करता हूँ ऐसा मूढ़ जीव मानता है, कोई तो शरीर ही मैं हूँ मानता है, ये मेरी पर्याय मानता है, और कोई मानता है ये मेरा शरीर है, वो मैं इसको चलाता हूँ, मैं हाथ हिलाता हूँ, मैं ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बराबर योग्य तो सावधानी पूर्वक मैं सब करता हूँ, ये क्या है सब उसका कर्ता बन बैठा है ना, मान्यता में कि शरीर की पर्याय मेरी है, क्योंकि शरीर मैं हूँ तो उसकी पर्याय मेरी है और शरीर की पर्याय मैं करता हूँ। पहला वो अहंकार था, ये ममकार है, मैं करता, ये मेरा है, कर्तापना हुआ। ऐसा मूढ़ जीव मानता है। मूढ़ यानी कौन सा? मिथ्या दृष्टि, उसको पर समय कहा। यहाँ पर ऐसी जो मान्यता है वो सकल अविद्याओं का एक मूल है। मूल समझते? जड़, उसके रूट्स। रूट्स। असमान जाति यानी जीव और पुद्गल दोनों को एक मानता है कि मैं आत्मा पुद्गल का कार्य कर सकता हूँ। उसको पुद्गल मानकर उसका कार्यकर्ता नहीं मानता है, अरे ये शरीर ही मैं हूँ, मैं और ये कोई दो बातें नहीं है, यही मैं हूँ, ऐसा मानता है। और पुद्गल मेरा वो पूरा सो चाहिए। कुछ कर सकता है ऐसा जो अज्ञान है, ये अज्ञान जो है वह सब अविद्या का मूल है। अमृतचंद्राचार्य की टीका है, असमान जाति को लिया है भाई। आत्मा को असमान जाति कहाँ है? आत्मा और शरीर पुद्गल दो असमान जाति है, उसको पर्याय में अपना मानते हैं। शरीर को ही अपना मानता है या स्व मानता है, और शरीर पर नजर है। नेक्स्ट पेज नीचे का पैराग्राफ 60 पेज पर लाइन के नीचे, नजर है नहीं दृष्टि है, यानी उस रूप अपने को मान रहा है। पर्याय दृष्टि वाले की दृष्टि शरीर पर है और पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई, उसकी दृष्टि द्रव्य पर है, ध्रुव पर है। समकीति की दृष्टि ध्रुव पर है, यानी आत्म स्वभाव जो ध्रुव है, कायम नित्य रहने वाला, टिकने काल एक सदृश भाव अनादि अनंत विद्यमान है, उसमें मैंपना स्थापित किया उसने, तो उसकी दृष्टि ध्रुव पर है ऐसा कहेंगे। देखो दृष्टि अलग बात है, ज्ञान अलग बात है। दृष्टि ध्रुव पर होगी तो ज्ञान पर्याय को जानेगा कि नहीं? पर्याय को भी जानेगा, पर को भी जानेगा, सब कुछ जानेगा। ज्ञान का कार्य तो जानना है, यहाँ दृष्टि की बात, मान्यता की बात है। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पर्याय पर है, इसका अर्थ है मिथ्या दृष्टि पर्याय जितना अपने को मानता है उसमें उसका अहमपना ममोपना सब पड़ा हुआ है। पर्याय पर होने से शरीर पर जाती है। कौन सी पर्याय ली यहाँ पर? असमान जाती, इसलिए वो शरीर पर दृष्टि है। शरीर ही मैं हूँ ऐसी मान्यता है, ऐसा सूक्ष्म। इससे तो दयापाली व्रत की, भक्ति की, पूजा की, ये सब आसान था। क्यों? मैं मनुष्य हूँ मान रहा था और मैंने पूजा की, मैंने दान दिया, मैंने यात्रा की, ये सब तो ये सब करना आसान था, क्योंकि उसमें तो शरीर में यानी मनुष्य पर्याय में एकत्व बुद्धि तो मैंपना तो था ही था, और मैंने ये सब कर लिए, मैंने धर्म किया, ऐसा मानता था, इसलिए वो सब आसान था। मिथ्यात्व तो रखड़ने के लिए आसान था ऐसा मान, क्योंकि भले कोई शुभ भाव भी किया परंतु उसमें एकत्व बुद्धि पड़ी, वो राग भाव में एकत्व बुद्धि, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा कार्य है, क्योंकि ये शरीर का कार्य मेरा है, उससे मैं जुदा कोई चैतन्य तत्व हूँ ये उसके पता ही नहीं है, यानी इसी में वो रचा पचा, इसी में अभिप्राय में वो उसी के साथ एकत्व पड़ा है, और यही बंध का कारण है, यही कह रहे हैं, इसलिए रखड़ने के लिए आसान बताए। जो जीव, फिर दोबारा ले रहे, जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, कैसे वो जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, मिथ्यात्व का, महामिथ्यात्व का यह मूल है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त यानी जैसे पहले बताया है आत्म स्वभाव की संभावना करने में, यथोक्त यानी जैसा है वैसा, पूर्व गाथा में कहा जैसा, संभावना यानी संचेतन, अनुभवन, मान्यता, आदर, वह तो आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक है, अनुभव करने में नपुंसक है, सामर्थ्यहीन है। क्लीब वो ब होना चाहिए, क्लीब कहा है, कली बने नपुसक हिजड़ा पावैया, कल बात आई थी ना संस्कृत में क्ली ब, वो नहीं ब होना चाहिए, क्ली ब कहाँ है, क्या कहते हैं? पेज नंबर 61 वो लाइन के नीचे, जो कोई प्राणी राग और शरीर की अवस्था मेरी है ऐसा मानता है ना, राग को भी लिया और शरीर की अवस्था को भी लिया, मेरी है ऐसा जो मानता है वह नपुसक है, पावैया हिजड़ा है। क्यों कहा ऐसा? जैसे नपुसक को वीर्य होता नहीं तो प्रजा होती नहीं, ऐसे पर को शरीर को अपना मानना, शरीर की क्रिया कर सकता हूँ ऐसा मानना, और आत्मा की पर्याय में राग है इतना मैं हूँ ऐसा मानना, यानी पर्याय में राग हो रहा है उतना ही मैं हूँ ऐसा मानना, वह नपुसक है, उसे धर्म की प्रजा उत्पन्न नहीं होती, धर्म परिणति उसको नहीं प्रकट होगी। क्यों? मान्यता में ये क्या है, राग, मैं राग रूप हो गया मानता है, और शरीर की क्रिया मेरी है मैं उसको करता हूँ ये मानता है, और वो कोई क्रिया करने में या राग भाव करने में धर्म भी मान लिया है, उसको ही आदरणीय मान लिया, सारे एक के पीछे एक, सारे एक गलत माने, समस्त अविद्याओं का मूल। अभी जितने अविद्या गिना वो हम सारे कि शुभ राग से धर्म मान रहा है, राग में अपनत्व कर रहा है, शरीर की मैं बोलता हूँ, मैं शरीर की क्रिया करता हूँ मानता, ये सारे अविद्या है ना, उसका एक मूल वो मिथ्या तो है, कौन सा पर्याय बुद्धि की नहीं उसने, कठिन बात है। समय सार में चार पांच जगह आया है, नपुसक क्लीब पुण्य को धर्म मानने वाला, यह है ना मिथ्यात्व, पुण्य को धर्म माना, नपुसक पावैया हिजड़ा है, व्यवहार रत्न त्रय से निश्चय होता है ऐसा मानने वाला नपुसक है, ऐसा कहते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या कथन आया उसको यहाँ नोट कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे। व्यवहार रत्न त्रय की बात कल आई थी, किसको कहेंगे व्यवहार रत्न त्रय? पहले रत्न त्रय किसको कहेंगे? समय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन रत्न का रत्न त्रय, वो कौन से है? तो जो समय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र है जो ओरिजिनली, वही तो रत्न त्रय है, वो तो खरेखर रत्न त्रय है, तो निश्चय है ही है। परंतु जिसको ऐसा रत्न त्रय प्रकट हुआ है उसके पर्याय में अभी शुभ राग है, देव गुरु शास्त्र की भक्ति है, उसके प्रति सच्ची वो श्रद्धा है, सात तत्वों की सम्यक प्रतीति चल रही है, श्रद्धा चल रहा है, स्वाध्याय करता है, ये जो कुछ उसके व्रता भी जो कुछ है उसके शुभ राग, वो उसको भी व्यवहार से रत्नत्रय कहने में आता है नहीं है। रत्नत्रय तो उसमें वितरागता आ गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ गया, और यहाँ तो अभी राग भाव है, जैसे स्वाध्याय करने का समय दृष्टि को स्वाध्याय का परिणाम है, समय दृष्टि को कुछ किसी को समझाने का परिणाम है, समय दृष्टि को व्रतादि का परिणाम है, ये सारे जो है उसके शुभ राग है, व्यवहार से उसको भी रत्नत्रय कह देते हैं। जैसे जीव साथ में है तो ये शरीर को भी सजीव कह देते हैं, शरीर कहाँ जीव वाला हुआ, शरीर कब सजीव हो गया, जीव सहित वाला है ना तो उसको कह देना, हम कहते हैं ये एकेंद्रीय जीव है, द्विंद्रीय जीव है, वो इंद्रिया थोड़ी जीव है, और उसके साथ में है तो उसको कह देते हैं। ऐसा ही यहाँ जिसको निश्चय रत्नत्रय है उसके जो अभी राग विद्यमान है उसके राग को व्यवहार से रत्नत्रय कह देते हैं। पर कोई क्या मानता है, हाँ जो समय दृष्टि को जो राग भाव होता है ना वैसा मैं अभी करूँ, कौन? मिथ्या दृष्टि मानता है, और ऐसा व्यवहार करने से मुझे निश्चय प्रकट होगा, तो उसकी मान्यता सर्वथा झूठ है, मिथ्या है। वही वो सब आ जाए, क्योंकि रत्न त्रय ना, जैसे अकेले हमने अभी राग की बात की, परंतु उसमें राग में तो यानी समय दर्शन है तो व्यवहार समय दर्शन भी है, समय ज्ञान है तो व्यवहार से भी ज्ञान है, चारित्र है तो व्यवहार से भी है, तो हर एक में लेना, वह सात तत्वों के श्रद्धान लेना, यहाँ आत्मश्रद्धान लेना, ख्याल में, यहाँ आत्मा का अनुभव है वो निश्चय में लेना, और ये शास्त्र का जो परोक्ष ज्ञान है उसको व्यवहार में ले लेंगे, वितरागता है वो निश्चय में लेंगे, और वहाँ राग भाव है उसको व्यवहार में लेंगे, व्रतादि को ले लेंगे, उसमें व्रतादि के भाव क्रिया नहीं, भाव, शुभ भाव, सामान्य से शुभ भाव में सबको कह देते हैं, परंतु वो करने से निश्चय प्रकट होता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है, ये कह रहे यहां पर। देखो ऐसा मानने वाला नपुसक है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय राग है, लिखा ना राग है, और निश्चय रत्नत्रय तो वीतरागी पर्याय है। भले वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहेंगे, पर वो सब वीतरागी पर्याय है। वीतरागी पर्याय तो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होती है, राग से नहीं। और राग इटसेल्फ किससे आश्रय से उत्पन्न, वो पर का लक्ष्य करके उत्पन्न हो रहा है, स्व के लक्ष्य से राग नहीं उत्पन्न हो रहा है। राग शुभ हो या अशुभ, पर का लक्ष्य करके उत्पन्न हो रहा है, और वो पर के लक्ष्य से राग होता है, और वो राग के कारण स्वभाव पर्याय हो, ये कैसी, ये तो विपरीत मान्यता है। यहाँ क्या कहा, वीतरागी पर्याय तो अपने स्वभाव द्रव्य स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होते, अपने द्रव्य स्वभाव, भगवान के आश्रय से भी नहीं, राग से नहीं। इसमें भी प्रवचन सार में भी नपुसक आ गया है, यह दूसरी बार आया, और समय सार में दो बार आया, 154 गाथा और 39-43 गाथा में आया है, क्लीप कहा है पाठ में। देखो यथोदित आत्म स्वभाव संभावन क्लीव, क्लीव है संस्कृत में, दूसरी पंक्ति है क्लीव, यथोदित आत्म स्वभाव संभावन क्लीव, दूसरी गाथा के बीच में नपुसक कहते हैं, आहा भगवान तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा का जो वीर्य है त्रिकाल पुरुषार्थ, वह पुरुषार्थ वीर्य स्वरूप की रचना करता है, वीर्य गुण हुआ उसका जो पुरुषार्थ जो है, वीर्य जो है वो क्या करता है, स्वरूप की रचना, पर्याय में स्वरूप की रचना करना, विभाव की रचना करे वह वीर्य नहीं, कि स्वभाव जो है वो अपने जैसा कार्य करेगा कि विपरीत कार्य करेगा, इसे कहते विभाव का जो रचना हो रही है वो तो स्वभाव का कार्य नहीं, वीर्य का कार्य नहीं, वह तो नपुसक है ऐसा कहते हैं। आहा धीरे से समझो, फिर से देखो कितनी बार घूंट घूंट कर, 47 गुण है, 47 शक्ति है ना, समय सार में जो 47 शक्तियां बताइए, आत्मा की 47 शक्तियां, उसमें वीर्य गुण लिया ना, वहां जो 47 शक्तियों में वो तो निर्मल रूप परिणमती हुई शक्तियों की बात वहां ली है, स्वभाव रूप परिणमन वहां लिया है। समय सार में आखिर में 47 शक्तियां है, उसमें एक पुरुषार्थ गुण वीर्य गुण लिया है, पुरुषार्थ उसकी पर्याय होती है, उसको वीर्य गुण कहते हैं। त्रिकाली भगवान में त्रिकाल पुरुषार्थ है, ये जो गुण होते हैं वो कब होते हैं, त्रिकाल होते हैं, क्यों त्रिकाल होते हैं, क्या स्वभाव है, नित्य तादात्म्य संबंध, द्रव्य नित्य तादात्म्य संबंध। देखो क्या कहते हैं, त्रिकाली भगवान में त्रिकाल पुरुषार्थ, नहीं ये पुरुषार्थ का ऊपर ऊपर सेकंड लाइन, पुरुषार्थ गुण वीर्य गुण लिया है, त्रिकाली भगवान में त्रिकाल पुरुषार्थ है, यानी वीर्य गुण ये जो त्रिकाल रहने वाले उसकी बात है, तो वह पुरुषार्थ का कार्य क्या करता है, तो कहते हैं क्योंकि प्रत्येक गुण का कार्य तो होगा, तो पुरुषार्थ का कार्य तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की रचना करना यह है, किसमें, पर्याय में रचना करना है ना, अभी नहीं है वो कर रहा है, उसका अर्थ क्या है, पर्याय, जैसा स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट होना, तो उसने पर्याय में उसने रचना की, ये कथन पद्धति है। निर्मल समय दर्शन ज्ञान चारित्र की रचना करे उसे वीर्य कहते हैं। आप कहेंगे समय दर्शन ज्ञान चारित्र तो उनकी पर्याय ज्ञान की श्रद्धा की चारित्र की, परंतु वीर्य गुण है तो उसका रूप प्रत्येक गुण में होगा, तो उसकी इसने वीर्य ने उसने रचना की ऐसा कहेंगे हम, ख्याल में आएगा। परंतु उसे छोड़कर राग की रचना करे उसे नपुसक कहते, यानी राग की रचना करे ऐसा कोई गुण ही नहीं है, वो एक समय के लिए खड़ा कर दिया है, उपाधिक भाव कहते हैं उसको। त्रिकाल आत्मा का कोई ऐसा गुण नहीं कि जो राग करता रहे, अगर ऐसा गुण होता तो सिद्धों में भी होना चाहिए था, ऐसा कोई गुण नहीं है। उल्टा तो राग को न करे ऐसे गुण है, वो तो सैतालीस शक्ति में आता है। कठिन लगे नए आदमी को तो ऐसा लगे, ऐसा कैसा उपदेश यहाँ कहते हैं ना, सुनो ना यहाँ क्या कहा। आत्म स्वभाव की संभावना करने में न पुसक, संभावना सम्यक भावना उसका अनुभव, संचेतन भी कहा था ना उसको, त्रिकाली भगवान ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव जो नित्य है ना, ध्रुव परम पारिणामिक भाव, स्वभाव भाव, ये एक ही के सारे नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग उसका नाम आता है, सबका अर्थ एक ही है। त्रिकाली स्वभाव, अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय न करके क्या किया उसने, पर्याय में राग का आश्रय करते हैं, उसे प्रभु यहाँ नपुसक कहते हैं। और वो राग का आश्रय तो करते हैं और मानते भी कि ये करना अच्छा है, ये करते करते मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और ये करते रहने से मुझे समय दर्शन हो जाएगा, यानी कितनी विपरीतता पड़ी है मान्यता में। अमृतचंद्राचार्य संत मुनि है, पंच महाव्रतधारी, आहा वीर्य गुण में ऐसा कहा है कि अपना वीर्य गुण जो त्रिकाल है, ये तो गुण है तो त्रिकाल होता है, वह तो शुद्ध पर्याय की रचना करता है, ये गुण का जो परिणमन है, गुण का जो कार्य है उसको पर्याय कहते हैं। तो ये गुण क्या कर रहा है, शुद्ध पर्याय की रचना करता है, उसे वीर्य कहते हैं। और जो वीर्य पुण्य और पाप शुभाशुभ भाव की रचना करे, वह अपना वीर्य नहीं, अपना बल नहीं, यानी आत्मा की किसी गुण का बल नहीं, वो तो भी अविद्या अज्ञान के कारण, उसने मिथ्यात्व के कारण खड़ा कर दिया है, वह नामर्द है। समय सार में 43 और 154 गाथा में नामर्द शब्द आ गया है, नामर्द मर्द नहीं, राग की रचना करके धर्म मानने वाला है वह नामर्द है, उसको यहाँ क्लीब कहा, नपुसक कहा। कठिन है, यह तो परमात्मा की वाणी है प्रभु, यह तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान विराजते हैं, उनके पास से यह वाणी आई है, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य ने वहां से आने के पश्चात इसकी रचना की है। क्या कहा वो फिर कल देखेंगे, एक पैराग्राफ कल पढ़ेंगे।
चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।
अरविंद भाई।